नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओ, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से दूसरी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है निर्गमन। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए, अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुने ये मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रतिदिन की तरह आज भी आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए बैठे हैं, और ये भी मैं विश्वास करता हूँ कि आज का समय हम में से हर एक के लिए अवश्य ही आशीषमय होगा। मैं उन नए श्रोताओं का भी स्वागत करता हूँ जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम निर्गमन की पुस्तक के 34 और 35 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि मूसा किस प्रकार से अपने लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहा था ताकि उसके लोग बचाए जाएं। आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 34 से आरंभ करेंगे और इस अध्ययन में हम पत्थर की नई पट्टियां, प्रभु के नाम की महिमा और मूसा का चमकता हुआ चेहरा इसके बारे में देखेंगे। आइए सबसे पहले व्यवस्था की नई तख्तियों के बारे में देखें। निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय उसके 1-4 पद में इस प्रकार से लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की दो और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। और बिहान को तैयार रहना और भोर को सीनै पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। मित्रों, यह व्यवस्था की दूसरी पट्टियां थी। जब मूसा सीनै पर्वत पर से नीचे उतरे और उन्होंने देखा कि इसराइली लोगों ने सोने के बछड़े की प्रतिमा बना ली और उसकी पूजा करने लगे, तब उसने अपने हाथ में पकड़े पट्टियों को फेंक कर चकनाचूर कर दिया। अब वह पुनः पत्थर की नई तख्तियों को लेकर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। तब हम आगे देखते हैं परमेश्वर के नाम का प्रचार, जिसे हम निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, तब यहोवा ने बादल में उतर के उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। मित्रों, प्रभु अब अपने नाम का प्रचार करते हैं। यह बात मूसा और इसराइली लोग दोनों के लिए ही एक महान प्रगति थी। एक नाम का अर्थ होता है, जैसे कि जब आप सीजर कैसर का नाम सुनते हैं तो आप क्या सोचने लगते हैं? अब्राहम लिंकन का नाम सुनकर आपके मन में क्या विचार आने लगता है? तुरंत आपके दिमाग में एक निश्चित तस्वीर उभर कर आती है। परमेश्वर अब अपने नाम का प्रचार करते हैं और उनकी इच्छा है कि इसराइली समाज मिस्र देश से छुड़ाए जाने के बाद के अनुभवों का स्मरण करे। हम निर्गमन 34 उसके 6-7 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और पर पोतों को भी देने वाला है। मित्रों, परमेश्वर कभी भी अपनी आंखें बंद करके किसी भी अपराधी पर अपनी कृपा नहीं बरसाते या यह नहीं कहते कि मैं उसके पाप को भुला दूंगा। पाप का दंड भोगना पड़ेगा और उसके लिए हर्जाना भी देना होगा। ईश्वर कभी भी किसी दोषी को यूं ही नहीं जाने देते। तब क्या होता है? तब वह कैसे अपनी दया को बनाए रखते और उस अपराध पर भी एक ही समय में दृष्टि बनाए रखते हैं? क्योंकि एक बलिदान दिया जा चुका है। उन दिनों में इसराइल ने जो बलिदान चढ़ाए उससे उनके पाप दूर नहीं हो गए, परंतु वे एक सिद्ध बलिदान की ओर इशारा करते हैं, अर्थात यीशु मसीह। वह आए और क्रूस पर उसकी मृत्यु के द्वारा सभी पापों को उन्होंने हर लिया। निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय उसके 7 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी भी रीति से निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और पर पोतों को भी देने वाला है। मित्रों, यह जानना अच्छी बात है कि आज जब आप पाप करते हैं तो उससे आपके बच्चे, नाती पोते तथा आने वाली अनेक पीढ़ियों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो हमें मनोविज्ञान के बारे में भी कुछ शिक्षाएं दी गई। हमें मानव की विभिन्न प्रकार की असाधारण अवस्था से भी परिचित कराया गया। सभी मरीज किसी न किसी असामान्य रोग से पीड़ित थे। जब हमने एक विशेष झुंड को देखा तो हमारी कक्षा के एक विद्यार्थी ने डॉक्टर से रोग जाने का कारण पूछा। डॉक्टर ने आसानी से उत्तर दिया, यह रोग या तो उसके पिता अथवा दादा और संभवतः परदादा से भी हो सकता है। मेरे मित्र, विश्वास रखें कि आप दंडाभाव के नियम से बच नहीं सकते हैं। परमेश्वर हमेशा एक सा है, उसके नियम कभी नहीं बदलते। परंतु ईश्वर का धन्यवाद हो कि वह हजारों पर अनुग्रह करता है, उनके अपराधों को क्षमा करता है। यदि हम उसकी ओर फिरे तो वह हमारे अपराधों को भी अवश्य क्षमा करेंगे। हम निर्गमन 34 उसके 8-9 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तब मूसा ने फुर्ती कर पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत की और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। मित्रों, यहाँ चौथी बार इन लोगों के लिए शब्द हठीले या ऐंठी गर्दन वाले का प्रयोग हुआ है। मुझे आशा है कि अब तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि परमेश्वर ने इसराइली राष्ट्र को इसलिए नहीं बचाया कि वे दूसरों से अच्छे या बेहतर या भले थे, या इसलिए कि उन्होंने अच्छा बनने करने की प्रतिज्ञा की थी। वे तो निश्चित ही ऐंठी गर्दन वाले और हठीले लोग थे। तब हम आगे देखते हैं मूसा के साथ नई वाचा। निर्गमन 34 उसके 10 पद में लिखा है, उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ तेरे सब लोगों के सामने, मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए, और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने पर हूँ वह भय योग्य काम है। मित्रों, शब्द भय योग्य का अर्थ है आतंक के लिए उत्तेजित करना। यह शब्द का अर्थ भयंकर नहीं है जैसा हम समझते हैं। यह सुरक्षा के कवच का भाग है जो ईश्वर उसके लोगों के चारों ओर फैलाए रहता है। यदि उसने ऐसा नहीं किया होता तो वे कब के उनके शत्रु द्वारा लूटे जा सकते थे। हम निर्गमन 34 उसके 11 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ उसे तुम लोग मानना। देखो, मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, कनानी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को निकालता हूँ। मित्रों, परमेश्वर कहते हैं कि वह उनके शत्रुओं को बिल्कुल भगा देंगे, और यह तीसरी बार उसे दोहराते हैं। तब हम निर्गमन 34 के 12 पद में पढ़ते हैं, इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा ना बांधना, कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे। परमेश्वर ने उन्हें उस देश के लोगों से किसी भी प्रकार की वाचा ना बांधने के प्रति सचेत किया। जब वे गिबोनी लोग यहोशू के पास आए तो उन्होंने कैसे इसराइली लोगों से छल कपट की बात की। सूखी रोटी के टुकड़े दिखाकर उन्होंने यहोशू को प्रभावित किया कि वे दूर देश के लोग हैं। कनान देश के लोगों के साथ वाचा बांधने को परमेश्वर क्यों मना करता है? यदि वे इन लोगों से किसी भी प्रकार की संधि करते हैं तो छल प्रपंच से फंसकर पुनः मूर्ति पूजा की ओर वे बढ़ जाएंगे। यही कारण था कि परमेश्वर उन्हें मना करते हैं। तब हम निर्गमन 34 उसके 13 और 14 पद में पढ़ते हैं, वरन उनकी वेदियों को गिरा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना और उनके अशेरा नाम मूर्तियों को काट डालना, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला ईश्वर ही है। मित्रों, वह जलन रखने वाला ईश्वर है और अन्य किसी झूठे देवता के साथ अपनी महिमा और आदर को नहीं बांटना चाहता है। फिर कोई कारण नहीं कि हम ईश्वर के ईर्ष्यालु होने के लिए क्षमा मांगे। एक बार किसी पत्नी ने मुझसे कहा, मेरे पति को मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं होती, उसे इस बात पर अहंकार था, परंतु मेरे विचार से यदि उसका पति उससे ईर्ष्या नहीं करता तो उसे प्रेम भी नहीं करता। किसी वस्तु या व्यक्ति जिससे आपको प्रेम है या ईर्ष्या है उसे आप दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहते। आप बुराई के ढंग से भी ईर्ष्यालु हो सकते हैं, परंतु हमारी चर्चा इस बात पर नहीं है। जब किसी व्यक्ति से आपको प्रेम है तो उसके प्रति चिंता भी होगी और आपको उसकी परवाह भी करना है। मित्रों, हम 34 अध्याय के 15 से 17 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, ऐसा न हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करें, उनके लिए बलिदान भी करें और कोई तुझे न्योता दे और तू भी उसके बलि पशु का प्रसाद खाए, और तू उनकी बेटियों और अपने बेटों के लिए लावे और उनकी बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती हैं तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करवाए। तुम देवताओं की मूर्तियां ढालकर ना बना लेना। मित्रों, कनान देश मूर्ति पूजा से भरा था। जैसा कुत्ता मक्खी से घिरा रहता है वैसे ही वह देश भी था। वह देश भयंकर अनैतिकता, अधर्म, अनाचार से भरपूर था। परमेश्वर ऐसे लोगों से दूर रहने को कहता है तथा उनसे किसी भी प्रकार की वाचा या संधि बांधने के लिए मना करता है। इसराइल को उन्हें नष्ट करना अथवा उस देश से निकाल देना था। आलोचकों ने सैकड़ों वर्ष से इसके विपरीत बातें कही है, तो भी इसके मूल कारणों का कभी भी गंभीरता से सोच विचार नहीं किया गया है। निसंदेह स्पष्ट कारणों से ही परमेश्वर अपने लोगों को मूर्ति पूजा जैसे पाप की भयंकरता से बचाना चाहता था। परंतु एक और कारण भी था। सबों को ज्ञात है कि कनान देश के लोगों में सबसे अधिक यौन रोग सता रहे थे। ईश्वर उसके लोगों को इन भयंकर रोगों से बचाना चाहते हैं। इसराइल ने ईश्वर की आज्ञा उल्लंघन किया और इन लोगों को पूर्णतः देश से बाहर नहीं निकाला, जिसके परिणाम भी उन्हें भोगने पड़े। अंततः परमेश्वर ने उन्हें बाबुल की गुलामी में जाने दिया। तब हम आगे देखते हैं पर्व और सप्त का दिन अर्थात विश्रामवार का दिन को मानना। निर्गमन 34 उसके 18 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, अखमीरी रोटी का पर्व मनाना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, क्योंकि तू मिस्र में अबीब महीने में निकल आया। मित्रों, पुनः पर्वों और विश्राम दिनों की स्थापना के द्वारा परमेश्वर इसराइलियों को कनान के देश में प्रवेश कराने की तैयारी में है। हम निर्गमन 34 उसके 23 पद में पढ़ते हैं, वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इसराइल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपने मुंह दिखाएं। परमेश्वर एक लंबी सूची प्रस्तुत करते हैं और उन बातों के बारे में जिन्हें इसराइल को पालन करना है और नहीं भी करना है बताते हैं। तब हम निर्गमन 34 के 25 और 26 पद में पढ़ते हैं, मेरे बलिदान के लहू को खमीर सहित न चढ़ाना और न फसा के पर्व के बलिदान में से कुछ बिहान तक रहने देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी के बच्चे को उसकी माँ के दूध में न सिझाना। मित्रों, इसराइली लोगों को परमेश्वर को प्रथम स्थान देना था। बलिदान का लहू खमीर सहित का अर्थ है उबाल कर, उसे उसकी माँ के दूध में न उबालना, जो विशेष बात है कि अस्वाभाविक अप्राकृतिक बातों को न करना। तब हम आगे देखते हैं मूसा के मुंह की चमक। निर्गमन 34 उसके 29 से लेकर के 35 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। जब हारून और सब इसराइलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकलती हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इसराइली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बातें न कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा, और जब जब मूसा भीतर यहोवा से बातें करने को उसके सामने जाता, तब तब वह उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारते हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इसराइलियों से कह देता था। सो इसराइली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती है, और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर न जाता, तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। मित्रों, यहाँ पर हमारा यह अध्याय समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को 35 अध्याय से जारी रखेंगे, और इस अध्ययन में हम कुछ विशेष बातों को देखेंगे, जैसे सप्त का मानना, पवित्र तंबू के लिए भेंट और बसलेल व ओहिलियाब को कार्य के लिए बुलावा। हम देखते हैं सप्त अर्थात विश्राम के दिनों की पुनर्स्थापन, या तीसरी बार परमेश्वर इसराइली लोगों से दोबारा सप्त के विषय में बात करने को लौटते हैं। हम निर्गमन की पुस्तक 35 अध्याय उसके 1-3 पद में पढ़ते हैं, मूसा ने इसराइलियों की सारी मंडली इकट्ठी करके उनसे कहा, जिन कामों के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वे ये हैं, 6 दिन तो काम काज किया जाए, परंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। उसमें जो कोई काम काज करे वह मार डाला जाए, वरन विश्राम के दिन तुम अपने अपने घरों में आग तक न जलाना। मित्रों, परमेश्वर सप्त मानने का पहला कारण सृष्टि के आरंभ से ही होने को बताते हैं। परमेश्वर ने सप्त के दिन ही विश्राम किया। जैसे जैसे मानव जाति परमेश्वर के हाथ की सृष्टि से अलग होती गई, वह ईश्वर से भी दूर हो गई। एक ऐसा भी दिन आया कि संपूर्ण मानव जाति सृष्टिकर्ता को भूलकर सृष्टि की रचना और उपासना करने लग गई, और मानव ने सप्त का दिन मनाना बंद कर दिया। अब ईश्वर ने बतलाया कि सप्त इसराइली जाति के लिए उसके मध्य एक विशेष चिन्ह और स्वरूप है। अब ईश्वर ने ऐसे नियम बना दिए जो इसराइली लोगों पर साधारणता और विशेष रूप से प्रतिज्ञा के देश में लागू होने थे। यदि वे सप्त के दिन कार्य करेंगे तो उन्हें मृत्यु दंड मिलेगा। हमारे समाज में आजकल सप्त के दिन अथवा शनिवार को काम न करना बिल्कुल असंभव है। मान ले कि यदि उस दिन आग न जलाई जाए तो इससे उत्तर दिशा बर्फ से जम जाएगी और बड़ी समस्या पैदा होगी। परमेश्वर के नियम केवल इसराइल देश तक ही सीमित थे। मित्रों, हम आगे देखते हैं पवित्र तंबू के लिए भेंट। निर्गमन के पुस्तक 35 अध्याय उसके 4 और 5 पद में लिखा है, फिर मूसा ने इसराइलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितनी अपनी इच्छा से देना चाहें वे यहोवा को भेंट करके ये वस्तुएं ले आएं, अर्थात सोना, रूपा, पीतल। तंबू के लिए भेंट चढ़ाना स्वेच्छा से था। लोगों का अपने साथ कुछ लाने के लिए वे बाध्य नहीं थे। उन पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव या जोर नहीं डाला गया। यह दशवांश का भाग नहीं है, यह स्वेच्छा से दी गई भेंट थी। सोना, चांदी व पीतल के अलावा वे अन्य वस्तुएं भी स्वेच्छा में भेंट कर सकते थे। तब हम निर्गमन 35 उसके 6 पद से 9 पद में पढ़ते हैं, नीले, वैजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइसों की खालें, बाबुल की लकड़ी, उजियाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल और धूप के लिए सुगंध द्रव्य, फिर एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि। मित्र, ये अनेक वस्तुएं हैं जिन्हें इसराइली लोग पवित्र तंबू के निर्माण कार्य के लिए दे सकते थे। उन दिनों में वैधानिक तरीके से कोई भी टेंडर या ठेका नहीं दिया जाता था। चीजों का लेन देन आदान प्रदान प्रथा के अनुसार होता था। अतः इसराइली लोग परमेश्वर को पैसे की अपेक्षा वस्तुएं देना अधिक उपयुक्त समझते थे। आज भी इस प्रथा को अपनाया जा सकता है। कुछ वर्ष पूर्व एक व्यक्ति ने हमारे रेडियो प्रसारण सेवकाई के लिए 2 अनमोल उपयुक्त यंत्र भेंट में दिए। ये रिकॉर्डर बड़े कीमती थे और उस वक्त दिए गए जब हमें इसकी बहुत ही आवश्यकता थी। मित्रों, अधिकतर लोग सोचते हैं कि भेंट के लिए सदैव चेक देना चाहिए। इतनी भूल न करें। हाँ, हमें पैसे की भी आवश्यकता पड़ती है, परंतु प्रभु की सेवा आप वस्तुओं के दान से भी कर सकते हैं, अर्थात दान देने के द्वारा। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि इसराइली लोगों के पास पवित्र तंबू में भेंट देने के लिए ये वस्तुएं कहाँ से आई। वे मिस्र देश की गुलामी में रहते थे। याद रहे, परमेश्वर ने कहा कि मिस्र देश से बड़ी संपत्ति लेकर निकलेंगे। उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय उसके 14 पद में हम उसे पाते हैं, उसने उनसे अपना सारा पैसा, पगार आदि इकट्ठा कर लेने को कहा। मिस्री भी उनके मिस्र छोड़ने से इतना प्रसन्न थे कि जो कुछ भी इसराइलियों ने मांगा, मिस्रियों ने भरपूरी से उन्हें दिया। अतः वे धनी होकर के वहां से बाहर निकले। तब हम आगे देखते हैं, बसलेल और ओहलियाआब कार्य के लिए बुलाए जाते हैं। निर्गमन 35 उसके 30 और 31 पद में, तब मूसा ने इसराइलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, जो उरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है, और उसने उसको परमेश्वर की आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है। मित्रों, बसलेल को परमेश्वर ने साज सज्जा का सामान, जिनका तंबू में इस्तेमाल होना था, उसके लिए कुशल कारीगर नियुक्त किया है। तब हम 35 उसके 34 पद में पढ़ते हैं, फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहिसमाक के पुत्र ओहलियाआब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी। मित्रों, परमेश्वर ने बसलेल को अपने कार्य कुशलता को दूसरों को देने के लिए भी सामर्थ दिया। हम 35 अध्याय के 35 पद में पढ़ते हैं, इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि खोदने और गढ़ने और नीले, वैजनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कढ़ने और बुनने, वरन सब प्रकार की बनावट में और बुद्धि से काम निकालने में सब भांति के काम करें। पवित्र स्थान एक सौंदर्य का प्रतीक था, जंगल में का एक हीरा। बहुत बड़ा नहीं, महान कार्यस्थल नहीं, केवल एक छोटी इमारत। पिछले वर्षों के एक अनुमान के अनुसार निवास स्थान की कुल लागत विभिन्न धातुओं के मूल्यांकन के साथ लगभग 2.5 लाख रुपए आंकी गई है। मित्रों, आजकल के अनुसार तो यह और भी अधिक हो सकती है। पवित्र स्थान परमेश्वर का अमूल्य आभूषण था। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का एक सजीव चित्र है। मेरे मित्रों, इससे पता चलता है कि हमारे प्रभु का स्थान कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने अपने स्थान को पवित्र रखने के लिए उन आभूषणों को इस्तेमाल किया जो सचमुच में उसकी महिमा को प्रकट करते हैं। आज हम में से प्रत्येक के लिए भी यह अवश्य है कि हम उसके निकटता में आए और अपने जीवन को पवित्र करें, ताकि हम भी उसके द्वारा से उसके निकटता में आकर आशीषों को प्राप्त कर सकें। मित्रों, यहाँ पर हमारे आज के अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि निश्चित रीति से आपने आशीषों को पाया है। लगातार उसकी संगति में बने रहें और अपने मित्रों को भी इसके बारे में जानकारी दें, ताकि वे भी इस कार्यक्रम को सुनकर अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
हम सब आते हैं करने स्तुति, धन्यवाद प्रभु की। हम सब आते हैं करने स्तुति, धन्यवाद प्रभु की। हम सब आते हैं करने स्तुति, धन्यवाद प्रभु की। हम सब आते हैं।